समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिसका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनेंगे, अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे कि क्या कुछ है उनके पास, और इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है या जन्मदिवस है। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं विनय सक्सेना और मेरे साथ मेरी सहयोगी है रेणु कटारिया। रेणु नमस्कार।
आपको भी नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आर लिसनर्स हु आर ट्यून्ड ऑन 100.1 FM एंड डियर लिसनर्स, एज Vinay has already told you that we both are going to be bringing you a selection of news, our discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes and much more, and all this over the next 30 minutes. पर विनय, पहले हम न्यूज हेडलाइन से शुरुआत करें।
जरूर, बिल्कुल।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर फ्रॉड्स गोइंग ऑन इन द नेम ऑफ डिजिटल अरेस्ट, एडवाइजर्स पीपल नॉट टू गेट स्केयर्ड एंड अडॉप्ट नेसेसरी स्टेप्स फॉर डिजिटल सिक्योरिटी।
प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में वैश्विक एनिमेशन और गेमिंग उद्योगों में भारत की बढ़ती भूमिका की चर्चा की। उन्होंने रचनात्मक कलाओं और संस्कृति के संरक्षण और उन्हें लोकप्रिय बनाने में युवाओं की भूमिका की सराहना की।
Home Minister Amit Shah inaugurates a new passenger terminal and a cargo gate at Petropol Land Port on India-Bangladesh border in West Bengal.
जापान में संसद के निचले सदन के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है।
And in squash, Akanksha Salunkhe clinches women's singles title at International Women's Open of Kazakhs in France.
और अहमदाबाद में दूसरे एक दिवसीय महिला क्रिकेट मैच में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला जारी है।
And now, Vinay, it is time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. And today we are going to be talking about Infantry Day. And today the country and all the countrymen are paying homage and paying tributes to the brave hearts who have sacrificed or who sacrificed their lives while protecting our motherland India. And उसी में, उसी के उपलक्ष्य में आज इन्फेंट्री डे बनाया जाता है। सो इन्फेंट्री डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द कंट्री टू एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशंस ऑफ इन्फेंट्री, द लार्जेस्ट फाइटिंग आर्म ऑफ द इंडियन आर्मी। दिस डे हैज अ यूनिक सिग्निफिकेंस एज ऑन दिस डे इन 1947 इन्फेंट्री मैन फ्रॉम द इंडियन आर्मी बिकेम द फर्स्ट ट्रूप्स टू लैंड एट श्रीनगर एयरपोर्ट, forcing the invaders backed by Pakistan to withdraw. On this occasion, Chief of Defence Staff General Anil Chauhan and Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi laid wreaths at the National War Memorial in New Delhi.
भारतीय सेना हर साल 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे के रूप में मनाती है। इस दिन जब सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन श्रीनगर एयरबेस पर उतरी और दृढ़ता और असाधारण साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सेना के बुरे मंसूबों को विफल करके दिवाल बन गई, जिसने 1947 में आदिवासी हमलावरों की मदद से कश्मीर पर आक्रमण किया था। 1947 में 26 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय हुआ। इसके लिए भारत जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर किए। तत्कालीन पाकिस्तान सरकार इस बात को पचा नहीं पाई। इसके बाद जम्मू और कश्मीर पर कब्जे की नीयत से पाकिस्तान सरकार ने आदिवासियों को आगे कर जम्मू और कश्मीर पर हमला कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय सेना को कार्रवाई करने का आदेश दिया। भारतीय सेना की ओर से सिख रेजिमेंट को ऑपरेशन के लिए जम्मू कश्मीर भेजा गया, जहां सिख रेजिमेंट ने 27 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में आक्रमण कर पाकिस्तानी लड़ाकों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया।
And Vinay, infantry is the largest combat branch of the Indian Army, also known as the Queen of the Battle. It is the backbone of the Indian Army and its soldiers bear the brunt of any war. Physical fitness, aggression and discipline are the basic qualities required in these men. Infantry units of the Indian Army have been modernized, equipped and trained to make the Indian Army the best in the world.
और इन्फेंट्री दिवस का उद्देश्य भारतीय सेना के बलिदानों के बारे में आम आवाम में जागरूकता पैदा करना है, साथ ही उन परिवारों के लिए गर्व का दिन है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया। इस अवसर पर सैन्य स्मारकों पर श्रद्धांजलि समारोह, बाइक रैली, साइकिल रैली सहित कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है।
And let's talk about the 1st Indian Battalion, which was then commanded by Lieutenant Colonel Divan Ranjit Roy. After securing the Srinagar airfield, the Indian soldiers rushed to Baramulla to stop the invaders in their tracks. Lieutenant Colonel Divan Ranjit Roy was able to delay the advances of the invaders towards Srinagar, but he was martyred near Baramulla. तो यहाँ पर हम पहले थोड़ा सा एक पेट्रियोटिक सॉन्ग सुन लेते हैं।
जरूर जरूर।
ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा की।
इन्फेंट्री डे को स्वतंत्र भारत की पहली सैन्य घटना के याद के रूप में मनाया जाता है। 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी सेना और लश्कर आक्रमणकारी द्वारा जम्मू कश्मीर को हत्याने की कोशिश की गई। तब भारतीय सेना के 6 रेजिमेंट की पहली बटालियन ने भारतीय धरती पर हमले पर जीत कर लड़ाई हासिल की लड़ी थी। इन्फेंट्री भारतीय सेना की सबसे बड़ी लड़ाकू शाखा है, जिसे युद्ध की रानी के रूप में भी जाना जाता है। ये भारतीय सेना की रीढ़ है, जिसमें शारीरिक फिटनेस, आक्रामकता और अनुशासन इसके आवश्यक बुनियादी गुण हैं। भारतीय सेना की इन्फेंट्री इकाइयों को आधुनिक, सुसज्जित और प्रशिक्षित किया गया है, ताकि भारतीय सेना को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाया जा सके। और अब समय अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। हिमाचल प्रदेश भाषा व संस्कृति विभाग द्वारा शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में 22 से 24 अक्टूबर तक 3 दिवसीय शिमला संगीत महोत्सव 2024 आयोजित किया गया। इस महोत्सव में प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत कलाकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के निवासी पटियाला घराने के हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पद्मश्री सोमदत्त बट्टू को सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं रिपोर्ट।
शिमला संगीत महोत्सव 2024 के पहले दिन शास्त्रीय संगीतकार और प्रसिद्ध सरोद वादक अर्णव चक्रवर्ती द्वारा सरोद पर राग माल गुंजी, लोकप्रिय कथक नर्तक मंजरी चतुर्वेदी व मीता पंडित द्वारा ग्वालियर के राजदरबार के लोकप्रिय रहे सूफी कथक नृत्य व गायन प्रस्तुत किया गया। मंजरी चतुर्वेदी ग्वालियर घराने से लेकर शाही दरबारों की परंपराओं तक के गीत और कहानियां प्रस्तुत करती हैं। वहीं मीता पंडित ग्वालियर घराने के पंडित परिवार की छठी अखंड वंशावली है, जिसने 200 से अधिक वर्षों से शास्त्रीय संगीत को जीवित रखा है। आयोजन के दूसरे दिन पंडित विद्याधर व्यास द्वारा राग भीमपलासी, राग दुर्गा और राग विधा की विशेष शैली तिरवट प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अलावा सुनंदा शर्मा व राजेंद्र प्रसन्ना द्वारा गायन व बांसुरी की जुगलबंदी की प्रस्तुति भी अत्यंत सराहनीय रही। सुनंदा शर्मा, जो हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा से संबंध रखती है, उन्होंने ख्याल, ठुमरी, दादरा, चैती और कजरी जैसे विविध संगीत रूपों में महारत हासिल की है। वहीं राजेंद्र प्रसन्ना एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं, जिन्हें बांसुरी और शहनाई दोनों में महारत हासिल है। आयोजन के तीसरे और अंतिम दिन अभय सोपोरी द्वारा संतूर वादन और वारसी भाइयों नसीर अहमद वारसी व नजीर अहमद वारसी द्वारा पारंपरिक राग में नात और कबाली की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। निदेशक भाषा एवं संस्कृति विभाग डॉक्टर पंकज ललित ने बताया कि इस दौरान एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 80 विद्यार्थियों को प्रसिद्ध गायक विद्याधर व्यास ने संगीत से जुड़ी बारीकियों का प्रशिक्षण दिया। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं रितेश कपूर।
And moving on to Nepal, the Jazzmandu Music Festival is being organized across Kathmandu Valley, celebrating international cultural interaction, promoting tourism and educating locals on different genres of music. So here we have more from our correspondent.
The 20th edition of the Jazzmandu Music Festival is being organized across Kathmandu Valley, celebrating international cultural interaction, promoting tourism and educating locals on different genre of music. Traditionally, this music festival is a week-long celebration before Tihar, which draws music lovers from across the Himalayan nation. The festival will end on October 30 with international jazz band from USA, Spain, Australia, Switzerland, Germany and local Nepali bands playing jazz for music lovers. Shweta Singh for Parikrama, Kathmandu.
And now let's move on to Jammu and Kashmir. The much-awaited Rajouri-Naushera Highway, which is a part of Jammu-Poonch National Highway NH-144 in Jammu Division, is almost finished and is set to greatly improve travel in the border district. The project, which has been under construction for several years, is in its final stages. This important road project includes 9 new bridges, one of which is 350 meters long, and a tunnel, all designed to make travel faster and safer. The new bridges, built to handle heavy traffic and tough weather, will make it much easier to travel between Rajouri and Naushera. The 350-meter bridge is a significant achievement, making travel across difficult areas smoother. More from our correspondent Gulshan Rena.
Another major feature of Rajouri-Naushera Highway is the Naushera Tunnel, which will significantly enhance connectivity during adverse weather conditions. This tunnel is expected to ensure smooth vehicular movement year-round, particularly benefiting the local population and businesses that rely on regular transport access. The tunnel has been built to bypass tricky mountain sections, cutting down travel time and ensuring the road stays open all year. The upgraded highway is expected to boost local business tourism and make life easier for residents, while also improving important defense routes in the region. The highway is expected to be officially opened in the coming month, marking a major step forward in J&K's infrastructure development. The highway serves as a crucial link between the districts Jammu and Poonch and will boost connectivity and promote development, particularly in the border area. Undertaken by the SGI Construction Company, the project promises to transform the region by improving road infrastructure and reducing travel time, ultimately enhancing tourism and local economy. The highway will address long-standing issue of poor connectivity in these border areas, which has hindered development and discouraged visitors. This region has great tourism potential, but due to lack of proper infrastructure, people have avoided coming here. After the completion of this project, tourism will get significant boost. One of the key components of this project is a 350-meter wire duct flyover being constructed in Bathuni village located in the Rajouri district. This flyover will not only improve travel efficiency by reducing the distance by at least 2 kilometers, but will also upgrade the current two-lane road into a more accessible multi-lane highway. The flyover is expected to be operational within the next few months, further streamlining travel across the region. The importance of Rajouri-Naushera Highway extends beyond just road connectivity. It serves as a crucial link between the districts of Jammu and Poonch, playing a vital role in regional economic development. And Gulshan Rana for Parikrama from Akashwani Jammu.
Moving on to the metro city of Bengaluru, which is gearing up to host two major international events by February next year, the Global Investors Summit in West Karnataka 2025 and the Aero India Air Show. For the first time, both events will occur simultaneously, with Bengaluru set to welcome distinguished guests and industry leaders from India and around the world. The Invest Karnataka Summit is scheduled for February 12 to 14, while Aero India will run from February 10 to 14, 2025. More from our correspondent.
Invest Karnataka 2025 Summit was announced well in advance to attract investments to the state. Aero India dates were subsequently aligned to coincide with this period. The Karnataka government sees this overlap as a unique opportunity despite logistical challenges. High-level sources confirmed that the Invest Karnataka Summit will proceed as planned with no postponements. Aero India, jointly organized by the Ministry of Defense, DRDO, HAL and the Ministry of Civil Aviation, will feature global aircraft manufacturers. This alignment with the Invest Karnataka is expected to boost aerospace and aviation investments, key focus areas for the state. The Karnataka government is also targeting investment in green hydrogen, semiconductors and aerospace. Officials believe Aero India's timing will enhance synergy between the two events, promoting growth across sectors. However, concerns have emerged over the feasibility of hosting two large events simultaneously, especially in terms of managing accommodation and hospitality. Despite these challenges, the state government is almost committed to holding the investment summit as scheduled. Ponnumon reporting for Parikrama from Bengaluru.
And now, dear listeners, we will take you to India's freedom journey through Azadi Ka Safar.
27th of October is the death anniversary of the great freedom fighter, revolutionary and journalist Brahma Bandhav Upadhyay. He was born on February 11, 1861 in Khonnan village of Hooghly district of West Bengal. When he was in high school, he became inclined towards the nationalist movement, and during his college education, he plunged into the freedom movement. Brahma Bandhav wanted to join the army of the Maharaja of Gwalior to learn the art of war and drive away the British. He made the effort twice, but returned disappointed with the policy of the Maharaja.
Like many of his contemporaries, Brahma Bandhav's desire was to establish national pride, coupled with a spiritual quest. His biographer, Julius Liebner, says, Brahma Bandhav made a significant contribution to the shaping of the new India, whose identity began to emerge from the first half of the 19th century. He was a contemporary and a friend of the poet Rabindranath Tagore and Vivekananda. Brahma Bandhav edited Bengali paper Sandhya and remained its editor till his last breath. He popularized Swaraj and the Swadeshi movement through Sandhya and another Bengali weekly, Yugantar, and wrote against the British colonialism and European cultural hegemony in Sofia in English. On 10th September 1907, Brahma Bandhav was arrested and prosecuted on a charge of sedition. His articles were found to be inflammatory. He refused to defend himself in the court, and on 23rd September 1907, a statement was submitted to the court through his counsel, Barrister Chittaranjan Das.
In the statement, Brahma Bandhav said he accepted the entire responsibility of the publication, management and conduct of Shondha, adding he was the writer of the article, which appeared in the paper on 13th of August 1907. It was one of the articles forming the subject matter of Brahma Bandhav's prosecution. He said he did not want to take part in the trial because he did not believe that in carrying out his humble share of the God-appointed mission of Swaraj, he is in any way accountable to the alien people who happen to rule over Indians and whose interest is and necessarily be in the way of Indians' true national development. During the trial, Brahma Bandhav reported pain in his abdomen and was admitted to the Campbell Hospital in Kolkata. He had undergone a surgery but could not overcome his sufferings and passed away on the 27th of October 1907. During the 46-year-old life, Brahma Bandhav Upadhyay sought truth relentlessly and engaged in the freedom struggle against foreign domination.
On 27th October 1904, revolutionary freedom fighter Jatindranath Das was born in Kolkata. At the tender age of just 17, he participated in the non-cooperation movement in 1921. Jatin was arrested by the British on 14th June 1929 in connection with the Lahore conspiracy case relating to the killing of British police officer John Saunders by revolutionaries. A crusader for rights of political prisoners, Jatin sat on a 63-day-long hunger strike in the Lahore Central Jail in protest against mistreatment of the prisoners by the British. During the course of this strike, he had to endure numerous hardships. Ultimately, Jatin made supreme sacrifice for the motherland on 13th September 1929. Subhash Chandra Bose described him as the young Dadichi of India.
And now for some sports news. Indian players are making significant strides across various disciplines, while several other events are lined up today. In squash, Akanksha Salunkhe has clinched the women's singles title at the second International Women's Open of Kauzix 2024 in France. Akanksha defeated Yashmita Jadish Kumar of Malaysia in a commanding final last night, sweeping the match in straight sets 11-7, 11-7, 11-6. And in table tennis, women's doubles pair of Yashashwini Ghorpade and Kritvika Roy will face South Korea's Kim Hyun and Yoo Si-woo in the final of WTT feeder event in Cagliari in Italy tonight.
भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम आज शाम काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में नेपाल से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:15 बजे शुरू होगा।
एंड एट द जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 इंडिया स्टार शटलर सुकांत कदम वन अ गोल्ड मेडल इन मेन्स सिंगल्स एंड अ सिल्वर मेडल इन मेन्स डबल्स अलोंग साइड हिज पार्टनर दिनेश राजेया। इन द डबल्स कैटेगरी सुकांत एंड दिनेश प्लेड इन अगेंस्ट इंडियाज उमेश विक्रम कुमार एंड सूर्यकांत यादव। इन अ closely contested third set, Sukant and Dinesh ultimately secured the silver with the final score reading 21-5, 20-22, 21-16.
और दोस्तों श्रोताओं, अब समय है करीब से देखने का उन खास लोगों को जिन्होंने आज जन्म लिया या इस दुनिया से विदा हुए।
And today we are paying tributes to Banda Singh Bahadur, who was a Sikh warrior and a general of the Khalsa army. At age 15, he left home to become an ascetic and was given the name Madhav Das Bairagi. He established a monastery at Nanded on the bank of the river Godavari. In 1707, Guru Gobind Singh accepted an invitation to meet Mughal Emperor Bahadur Shah I in southern India. He visited Banda Singh Bahadur in 1708. Banda became a disciple of Guru Gobind Singh and was given a new name, Gurbaksh Singh, after the baptism ceremony. He is popularly known as Banda Singh Bahadur. He was given 5 arrows by the Guru as a blessing for the battles ahead. He came to Kanda, Sonipat and assembled a fighting force and led the struggle against the Mughal Empire. His first major action was the sacking of the Mughal provincial capital, Samna, in November 1709. After establishing his authority in the Sikh Republic in Punjab, Banda Singh Bahadur abolished the zamindari or the feudal system and granted property rights to the tillers of the land. Banda Singh was captured by the Mughals and tortured to death in 1715 and 1716.
Aaj janm hai चेस के मशहूर खिलाड़ी और भारतीय शतरंज के दूसरे ग्रैंड मास्टर दिव्येंदु बरुआ का। उन्होंने 3 बार राष्ट्रीय खिताब जीता। वो बचपन से ही एक प्रतिभावान खिलाड़ी रहे हैं। 1978 में मात्र 12 वर्ष की आयु में दिव्येंदु ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और वो भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। 1991 में उन्हें ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया।
And today is the birthday of Anuradha Podwal, who is an Indian playback singer and who works prominently in Hindi cinema. She has been described in media as one of the most prominent bhajan singers and also as one of the most successful playback singers of 80s and 90s era of Bollywood. The recipient of several accolades, including a National Film Award, 4 Filmfare Awards, and to Odisha State Film Award. She has been honored by the Government of India with the Padma Shri, the country's 4th highest civilian honor for her contribution in the field of arts. Her contribution in Indian devotional music and Bollywood industry gained her the titles such as Bhajan Queen, Melody Queen. So, is Melody Queen ke liye ek pyari si medley sun lete hain?
Zarur sunaiye.
Oh,
और आज जन्म हुआ भारत के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी इरफान पठान का, जिन्हें आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इरफान भारत के ऐसे तेज गेंदबाज रहे हैं जिन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को हमेशा परेशान किया। वो भारतीय क्रिकेट टीम में एक शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध रहे। एक दौर में अपनी स्विंग गेंदबाजी से इरफान पठान ने बल्लेबाजों के मन में खौफ पैदा किया। इरफान पठान जब 19 साल के थे तब उन्होंने 2003 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की तरफ से पहला मैच खेला था। उन्होंने अपना आखिरी मैच 2012 में श्रीलंका के खिलाफ विश्व T20 कप में खेला था।
And we are paying tributes to K.R. Narayanan, who was an Indian statesman, diplomat, academic and politician who served as the 9th Vice President of India from 1992 to 1997 and as the 10th President of India from 1997 to 2002. And also today is the birthday, Vinay, of Pooja Bhatrashah, who is an Indian-American actress, model and beauty pageant title holder. She primarily works in Hindi films. She won the runner-up title at the Femina Miss India contest in 1993 and was crowned Femina Miss India International 1993 and so on. And the first film she signed was Virasat in 1997. So, isi movie ka ek pyara sa melodious song sun lete hain?
Bilkul. श्रोताओं, आज हमारे साथ छोड़ा भारत के प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार डॉक्टर नगेंद्र ने। वे आधुनिक हिंदी की आलोचना को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। वे काव्यशास्त्र के प्रकांड विद्वान माने जाते थे। उनके निबंधों में वैचारिक औदार्य के साथ साथ उनका व्यक्तित्व भी अभिव्यक्ति पा गया था। उनके निबंधों में एक हृदय तथा भावुक निबंधकार के गुण भलीभांति लक्षित होते थे। इसका कारण यह था कि नगेंद्र जी का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश एक कवि के रूप में हुआ था। वर्ष 1965 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और श्रोताओं, बात करेंगे विजय सिंह माधव जी ठाकर से, जिनका नाम था विजय मर्चेंट और आप जिन्हें भारतीय क्रिकेट में विजय मर्चेंट के नाम से जानते होंगे। विजय मर्चेंट क्रिकेट की दुनिया में डॉन ब्रेडमैन के जमाने के महान क्रिकेट खिलाड़ी थे। उनके प्रथम श्रेणी के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो वो डॉन ब्रेडमैन के बाद अगले नंबर पर आते हैं। उनका इन मैचों में औसत 71.64 रहा था। उन्हें वर्ष 1937 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सम्मान मिला।
जी, और हम अब बात करते हैं प्रदीप कुमार की। मुझे लगता है शायद आपके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, फिर मैं आगे बोलती हूँ उनके बारे में।
प्रदीप कुमार हिंदी और बंगाली फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे और हिंदी फिल्मों के वो ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने 1950 और 60 के दशक में अपने ऐतिहासिक किरदारों के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उस जमाने में फिल्मकारों को अपनी फिल्मों के लिए जब भी किसी राजा महाराजा राजकुमार और नवाब की जरूरत होती थी तो प्रदीप कुमार को याद किया जाता था। उनके उत्कृष्ट अभिनय से सजी फिल्में अनारकली, ताजमहल, बहू बेगम और चित्रलेखा है जिन्हें दर्शक आज भी नहीं भूले।
एंड ऑल्सो नागिन वैजयंती माला के साथ और मधुबाला के साथ उन्होंने करीब 8 फिल्मों में काम किया है और उनकी सारी मूवीज बहुत ही सक्सेसफुल होती थी। तो यहाँ पर हम पहले एक प्यारा सा गाना प्रदीप कुमार पर सुन लेते हैं।
हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे के कयामत हो और तू आए बुझी बुझी सी नजर में तेरी तलाश लिए, भटकते फिरते हैं हम आप अपनी लाश लिए, यही जुनून यही वहशत हो, यही जुनून यही वहशत हो और तू आए।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है कि आपसे अनुमति लें तो इजाजत दीजिए विनय सक्सेना और रेणु कटारिया को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा से सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर। साथ ही आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी हमारे कार्यक्रम 24 घंटे सुन सकते हैं। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं nfu.nsd@nic.in पर भी दे सकते हैं।
एंड थैंक यू सो मच डियर लिसनर्स फॉर बीइंग विद अस टिल नेक्स्ट टाइम। दिस इज विनय सक्सेना एंड मी रेणु कटारिया साइनिंग ऑफ। बाय बाय,
नमस्कार।
नमस्कार।
और तू आए खुदा करे।